بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15 اور 16 آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ जो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करता है वो अपने लाभ के लिए करता है, और जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें, और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों, आज शुक्रवार है, खुर्दाद माह की 6, मई की 27 और शव्वाल की 25 तारीख। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के अवसर पर हम आपकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और उसके सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा पत्र संसार। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। आज पूरी दुनिया में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का शोक मनाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि IRGC आतंकवादी गुटों के लिए एक डरावना सपना है। ईरान और भारत ने संबंधों में विस्तार पर बल दिया। भाजपा का दावा, 36,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद मौके पर ईरान समेत संसार के विभिन्न देशों में शोक मनाया जा रहा है। ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का शोक पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईरान के सभी छोटे बड़े शहरों में शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें वक्ता पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पवित्र जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाल रहे हैं। शोक सभाओं के आयोजन का क्रम गुरुवार की रात से ही शुरू हो गया था, जो अभी तक जारी है। ईरान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत खुजिस्तान के अबादान शहर में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने की वजह से कई लोगों के मर जाने और घायल होने की दुखद घटना पर इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामेनाई ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इस घटना के पीड़ित परिवारों के नाम शोक संदेश जारी किया है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामेनाई ने अपने संदेश में कहा कि आबादान की दुखद घटना, जानी नुकसान को कम करने के लिए तेज कार्रवाई और सभी संसाधनों को प्रयोग करने की जरूरत है। सर्वोच्च नेता ने अपने संदेश में कहा कि इस समय पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के साथ साथ इस चीज को भी प्राथमिकता दी जाए कि न्यायपालिका के सहयोग से घटना के जिम्मेदारों को पकड़कर सबक सिखाने वाली सजा दी जाए, ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसी गलती करने का साहस न कर पाए, और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि देश में इस तरह की दुर्घटनाएं आगे न हों। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमरीका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के जवाब में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान और उसकी सरकार और कानूनी सशस्त्र बल, विशेष रूप से IRGC की कुछ फोर्स, क्षेत्र में आतंकवादी और चरमपंथी गुटों के लिए हमेशा एक डरावने सपने जैसी रही है। इस्लामिक गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खदीबजादे ने एक बयान में कहा कि यह स्वाभाविक बात है कि आतंकवादी और चरमपंथी गुटों का जन्मदाता अमरीका और व्हाइट हाउस में बैठे इस देश के अधिकारी अपनी पूरी ताकत और आतंकी गुटों को जिंदा रखने और उनका समर्थन करने के लिए लगाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका ने वर्षों से ईरानी राष्ट्र और IRGC पर अवैध और क्रूर प्रतिबंध लगाया हुआ है और ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में महान योद्धा जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया। यह सब दर्शाता है कि अमरीका दुनिया में आतंकवाद को कैसे पाल पोस रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती भ्रामक टिप्पणियों के बावजूद बाइडेन प्रशासन बहुत ही विफल नीति अपनाए हुए है। सईद खतीबजादे ने वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हालिया कदम अमरीकी सरकार की बीमार मानसिकता को दर्शाता है, जो ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अत्यधिक दबाव की नीति को जारी रखे हुए है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव का कहना है कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने वाली जटिल प्रगतियों के दृष्टिगत स्वतंत्र देशों के बीच विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान और सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए प्रति संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए जरूरी है। अली शमखानी ने गुरुवार को ताजिकिस्तान में चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ होने वाली मुलाकात में कहा कि अफगानिस्तान में प्रगति उन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा पर सीधे प्रभावित होने की वजह से हमेशा क्षेत्रीय वार्ता के एजेंडे में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी सुरक्षा के लिए इस देश में एक समग्र सरकार के गठन की जरूरत है। ईरान की ओर से अफगान नागरिकों के पलायन की बड़ी लहर इस बात का चिन्ह है कि इस देश में सामान्य जीवन के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा विभिन्न सामाजिक गुटों को अभी तक हासिल नहीं हो सकी है। उन्होंने बहुत से क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ईरान और भारत के संयुक्त दृष्टिकोणों को आर्थिक संबंधों के विस्तृत करने के लिए फायदा उठाने का एक अहम अवसर करार दिया, जिससे दोनों देशों के लिए 5 वर्षीय व्यापार के लिए संभावित $30 अरब का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि चाबहार बंदरगाह को सक्रिय करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग स्वीकार्य है, लेकिन वर्तमान गतिविधियों में तेजी लाने से दोनों देशों के मध्य एशियाई मंडियों तक पहुंच में वृद्धि हो सकती है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और आतंकी हमलों के क्रम पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक समग्र सरकार के गठन में विफलता एक चुनौती थी, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले आतंकी गुट अब भी इस देश में सक्रिय हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने शुक्रवार को रूसी फेडरेशन की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाया पेट्रोशेफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एडमिरल अली शमखानी ने दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर उच्च स्तरीय परामर्शों की सराहना की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई प्रगति के हवाले से तेहरान मॉस्को सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने रूस के विरुद्ध पश्चिम के व्यापक प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान 43 साल से प्रतिबंधों के निशाने पर है और आजाद देशों पर राजनीतिक इच्छा थोपने के लिए प्रतिबंधों के निष्प्रभावी होने का चिन्ह बन गया है। उन्होंने अमरीका की एकपक्षीय नीतियों से निपटने के लिए तेहरान और मॉस्को के बीच रणनीतिक सहयोग स्थापित किए जाने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि ऐसा लगता है कि जंग की समाप्ति के साथ रूस के विरुद्ध प्रतिबंध खत्म नहीं किए जाएंगे, इसीलिए जरूरी है कि एक रणनीतिक और दीर्घकालिक परियोजना पर दोनों देश मिलकर काम करें। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। कर्नाटक के भारत के कर्नाटक राज्य में इन दिनों मंदिर मस्जिद विवाद गहराता जा रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक के एस ईश्वरप्पा ने कहा है कि 36,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और उन पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। उनका कहना था कि मुसलमानों को कहीं और मस्जिदें बनाने दें और नमाज अदा करने दें, लेकिन हम उन्हें अपने मंदिरों पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना था कि सभी 36,000 मंदिरों को हिंदुओं द्वारा कानूनी रूप से पुनः प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने जिन्ना के भाषण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने पर सवाल करते हुए कहा कि क्या आरएसएस के संस्थापक के बी हेडगेवार द्वारा दिए गए भाषण पर एक पाठ के बजाय जिन्ना पर एक पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हेडगेवार का भाषण जो स्कूली पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि की संस्कृति और देशभक्ति का परिचय देना था। लेबनानी सूत्रों का कहना है कि गुरुवार रात दक्षिणी लेबनान में एक इसराइली ड्रोन तबाह हो गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसराइल का जासूसी ड्रोन दक्षिणी लेबनान में एतशाब और रमीश इलाके में हवाई क्षेत्र में ड्रोन नष्ट हुआ। वहीं इसराइल ने स्काई क्लार्क प्रकार के तबाह हुए ड्रोन के मलबे को अपने कब्जे में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा और लेबनानी सेना तबाह हुए जायोनी ड्रोन के मलबे को अपने कब्जे में लेने में सफल हो गई। वहीं लेबनानी सुरक्षा एजेंसी के लिए अब यह सवाल पैदा हो गया है कि इस तबाह हुए ड्रोन में ऐसा क्या है जिसके मलबे को हासिल करने के लिए इसराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध संगठनों ने फ्लैग मार्च के रूप में जायोनियों के मस्जिदुल अक्सा में प्रवेश की ओर से सचेत किया है। इसराइली बस्तियों के निवासी हर साल फ्लैग मार्च निकालते हैं और इसका मकसद अवैध अधिकृत बैतुल मुकद्दस के प्राचीन क्षेत्रों पर उनके अवैध कब्जे की याद को ताजा करना है। दक्षिण यमन के अदन शहर में एक बाजार में भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में 35 लोगों के हताहत और घायल होने की सूचना है। इसराइली युद्ध मंत्री बेनी गेंट्स भारत का दौरा करने वाले हैं, वो अगले सप्ताह भारत का दौरा कर सकते हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे इराक की संसद में पास होने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव की। सुरक्षा परिषद में चीन और रूस ने अभूतपूर्व समन्वय का परिचय दिया है। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। भारत नियंत्रित कश्मीर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के खिलाफ तनावपूर्ण हालात हैं। दूसरी ओर हिंसा की घटनाएं भी जारी हैं।
कल रात में 2 इनकाउंटर हुआ है।
ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही है। आरंभ करते हैं इराकी संसद के प्रस्ताव से। इराक की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके इसराइल के साथ किसी भी तरह के रिश्ते रखे जाने को अपराध घोषित कर दिया है। बगदाद से जलाल खालिदी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
مجلس النواب يعقد جلسة للتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
इराक की संसद ने बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की हर कोशिश को अपराध घोषित कर दिया है।
इसराइल! इसराइल! इसराइल!
گروار کو ہونے والی بیٹھک میں سانسدوں نے صاف شبدوں میں کہا کہ عراق ہمیشہ فلسطین کا سمرتھک اور اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کا ویرودھی رہے گا اور اسرائیل سے کسی بھی طرح کا رشتہ اپرادھ ہے۔
ہذا القانون،
ایک سانسد نے کہا کہ اس پرستاؤ کے پارت ہونے سے عراقی جنتا کی اس اچھا کا اعلان ہو گیا کہ عراق فلسطین کا سمرتھک ہے اور رہے گا۔ عراق میں جنتا یا سنسد کسی کو بھی اسرائیل سے رشتے قائم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ ہم سب کے لیے گرو کی بات ہے۔ اس قانون کے انوسار سارے عراقی سنستھان چاہے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، کمپنیاں ہوں یا عام لوگ، دیش کے بھیتر یا باہر، یہاں تک کہ اسرائیل سے راجنیتک، پرچارک، آرتھک، سانسکرتک، کھیل کود، کسی بھی شیتر میں کوئی سمبندھ نہیں رکھیں گے۔ یہاں تک کہ عراق میں رہنے والے ودیشی بھی اسرائیل سے کسی بھی طرح کا رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ عراق میں اسرائیل سے رشتوں کو اپرادھ گھوشت کرنے والے پرستاؤ کو ٹیکہ کار عراق میں امریکہ کی ناکامی کی مثال مانتے ہیں۔ جانکار سوتر کہتے ہیں کہ امریکی دوتاواس نے چپکے چپکے اس پرستاؤ کو روکنے کی بڑی کوشش کی مگر اسے کامیابی نہیں ملی۔ بغداد سے IRIB کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ۔
اتری کوریا کے معاملے پر سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد میں روس اور چین کا زوردار سمنوے نظر آیا ہے۔ نیویارک سے کامران نجف زادے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں روش زیدی۔
ایسا لگتا ہے کہ بیجنگ اور ماسکو اس سمے ودیش نیتی میں بھرپور سمنوے کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک ہفتے تک سرکشا پریشد پر دباؤ ڈالا کہ اتری کوریا کے خلاف نندا پرستاؤ پارت ہو جائے۔ پیونگ یانگ کے کوئلے اور فشری پر پوری طرح پرتیبند پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے جاپان اور دکشن کوریا سے پہلے ہی سرکشا پریشد میں ایک مسودہ پیش کر دیا اور دوسروں سے مانگ کی کہ وہ اس کا سمرتھن کریں۔ کیوں؟
کنٹینیو ٹو گرو مور ڈینجرس،
اس لیے کہ کم جونگ اون نے انٹر کانٹیننٹل میزائل کا پرشکشن کیا ہے، لیکن روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ یہ پچھلے 16 سال میں پہلی بار ہوا ہے کہ سدسیوں کے بیچ اتری کوریا پر مدبھید کھل کر بیان کیا جا رہا ہے۔ امریکہ دوارا لائے گئے مسودے میں تمباکو اور تیل کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سرکشا پریشد کی بیٹھک لگ بھگ بے نتیجہ سماپت ہو گئی۔ ادھر کم جونگ اون نے بائیڈن سے ملاقات کا پرستاؤ ٹھکرا دیا ہے۔ اتری کوریا کے شاسک کی یہ پرتکریا بہت کچھ بتاتی ہے۔ اس انکار میں بہت گہرے سندیش چھپے ہیں۔ سب سے پہلا سندیش تو یہ ہے کہ اتری کوریا کو امریکہ کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ایک تو امریکہ اب اس حالت میں نہیں رہ گیا ہے کہ وہ اتری کوریا پر دھوس جما سکے، اور دوسرے یہ کہ اتری کوریا کو یقین ہے کہ چین اور روس کے ساتھ اس کے سمبندھ پرتیبندھوں کا سامنا کر رہی اتری کوریا کی اکنامی کے لیے نجات کی نوکا کا کام کریں گے، جیسا کہ اب تک ہوتا آیا ہے۔ دنیا کے بہت سے دیشوں، یہاں تک کہ خود امریکہ میں وچارکوں کے بیان لگاتار آ رہے ہیں کہ پوسٹ امریکن ایرا کی شروعات ہو چکی ہے، یعنی دنیا اب جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے اس میں واشنگٹن، یہاں تک کہ نیٹو کے پاس بھی کسی دیش پر دباؤ ڈالنے اور کسی سرکار کو دھمکانے کی شمتا نہیں رہ گئی ہے۔ یہ وچار ویسے تو کافی پہلے سے پنپ رہا تھا، لیکن حالیہ سمے میں یوکرین یدھ سے اس وچار کو اور زیادہ بل ملا ہے۔ نیو یارک سے IRIB کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ۔
بھارت نینترت کشمیر میں حالات کافی تناؤپورن ہیں۔ الگاوادی نیتا یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے خلاف گھاٹی میں آکروش نظر آ رہا ہے۔ ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जेके लिए अध्यक्ष और अलगाववादी नेता मोहम्मद यसिन मलिक को नई दिल्ली की एक अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जुमा दिवस को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया है, परंतु नमाज की यहाँ अनुमति दी गई है। श्रीनगर के मायसूमा क्षेत्र जहाँ पर मोहम्मद यासिन मलिक का निवास मौजूद है, मैं भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी नियुक्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 दिवस से श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में इस निर्णय के विरोध में लोगों ने आपत्ति जताते हुए अपना कारोबार बंद कर रखा है। प्रशासन का कहना है कि मोहम्मद यासिन मलिक को जो सजा मिली है वो कानूनों के आधार पर हुई है और इसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से जारी है। 2 अलग अलग इनकाउंटर्स में 4 अलगाववादी छापा मार हताहत हुए हैं, जिसमें IGP कश्मीर का कहना है कि जो 2 दिवस पहले एक TV आर्टिस्ट हताहत कर दी गई थी, उनके आरोपियों को भी हताहत कर दिया गया। IGP कश्मीर विजय कुमार ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि दक्षिणी कश्मीर के उंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ जो 2 मिलिटेंट हताहत हुए, उनमें से एक वड़ीपोरा चाडोरा का रिहायशी था और वो इस आमरीन नामी उस TV आर्टिस्ट की हत्या में आरोपी था। उन्होंने कहा कि इस तरह फकत 24 घंटों के दौरान उन आरोपियों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। जबकि श्रीनगर के बसपोरा में भी एक ऐसी मुठभेड़ में 2 अन्य अलगाववादी छापामारों के हताहत होने की सूचना है जो स्थानीय है। इस बीच फकत 3 दिवस के बीच में 10 के निकट अलगाववादी और 1 सुरक्षाकर्मी हताहत हुआ है। हिंसक घटनाओं में बहुत तेजी आई है। IGP कश्मीर ने कहा है कि अलगाववाद और आतंकवाद को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IGP कश्मीर ने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी, जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, सी कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 से राइफल, 1 पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर वंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LET का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मार लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है।
इधर कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस, जो अलगाववादी गुटों के गठबंधन है, ने एक बार फिर नई दिल्ली से प्रार्थना की है कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी नीतियों में तब्दीली लाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग कश्मीर समस्या का शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं, परंतु हमारी आवाज को ताकत के बल पर दबाया जा रहा है, जो सही नहीं है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और श्रोताओं, कश्मीर के हालात पर सिप्ते मोहम्मद हसन की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आपने सुना कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और राजनीतिक चर्चा के बाद अब आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है पैगंबर इस्लाम के पौत्र हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शहादत दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। और इस विशेष कार्यक्रम के बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा सभा का अंतिम कार्यक्रम पत्र संसार। तो लीजिए, पहले सुनिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शहादत दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेरदादी और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
دوستوں، 25 شوال سن 148 ہجری قمری، پیغمبر اسلام کے اترادھیکاری اور حضرت علی کے ونشج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ لگ بھگ 3 دشکوں تک ایشوریہ مارگ درشن کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد 65 ورش کی آیو میں عباسی خلیفہ منصور نے زہر دوارا امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرا دیا تھا۔ آپ کی شہادت کے دکھد افسر پر ہم ہاردک سنویدنا پرکٹ کرتے ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام ایسی مہان ہستی تھے جس کے اتھک پریاسوں کو پیغمبر اسلام کے بعد اسلامی اتہاس میں بہت مہتوپورن مانا جاتا ہے۔ ان کی شہادت سے نہ کیول اسلامی جگت دکھی ہوا بلکہ گیان اور ستیہ کے کھوجیوں کو بھی اس سے بہت دکھ پہنچا۔ امام جعفر صادق کی کنیت ابا عبداللہ تھی اور آپ کا مشہور لقب صادق تھا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پریجنوں کا ایک سنیکت لکش اسلام کی سرکشا اور اتیاچار ایوم انیائے سے مقابلہ کرنا تھا۔ اسی لکش کی پراپتی کے لیے انہوں نے اپنے سمے کی پرستھتیوں کے مطابق پرتیرودھ کی شیلی کا چین کیا۔ ان مہان ہستیوں نے وبھن شیلیوں میں اسلامی شکشاؤں کا پرچار ایوم پرسار کر کے اس مہان ذمہ داری کو انجام دیا۔
سارے ہی معصوم اماموں کی جیون شیلی اور ان کی نیتی کا نردھارن تتکالین سمے کی پرستھتیوں کے انوسار رہا ہے۔ اگر ہم ان میں سے ہر ایک کے کال کی پرستھتیوں کا ادھیان کریں گے تو ہمیں ان کے آچرن کے سدھانتوں میں کسی بھی پرکار کا کوئی ورودابھاس نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ سبھی ایک ادیش رکھتے تھے، انہوں نے اپنے جیون میں ایک ہی لکش کا پیچھا کیا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک نے اس ادیش کی پراپتی کے لیے الگ الگ پرکار کی رننیتیوں کا چین کیا۔
واستوکتا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے سمے کی پرستھتیوں کے دشٹیگت اسلامی شکشاؤں کا پرچار ایوم پرسار کیا۔ آپ نے ایک امام کے روپ میں اپنی ذمہ داری کو اچت ڈھنگ سے نبھایا۔ ایک ایشوری مارگ درشک کے روپ میں امام صادق علیہ السلام نے لوگوں ایوم سماج کے پرشکشن اور اسلام کے ویچارک مت کی بنیاد رکھنے کو ضروری سمجھا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کال ایک ایسا کال تھا جس میں وبھن پرکار کی گھٹنائیں گھٹیں۔ ان کے کال کو اسلامی اتہاس کی گھٹناؤں سے بھرا ہوا کال بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کال میں شاسن کا ہستانترن بنی امیہ سے بنی عباس کو ہو رہا تھا، جس دوران بہت ہی ادھک اتار چڑھاؤ آئے۔
دوسری اور یہ کال متوں اور وچارداراؤں کے ٹکراؤ ایوم دارشنک وچاروں کے پھیلاؤ کا بھی کال تھا۔ اس کال میں مسلمان بھی گیان کی پراپتی میں آگے آگے تھے۔ اس کے علاوہ انواد دوارا اسلامی جگت تک دارشنک وچار پہنچ رہے تھے۔ نشچت روپ سے اس کال میں اسمنجس کی استھتی میں پڑنے اور سستی دکھانے سے لوگ بھٹک جاتے۔ ایسے میں اس بات کا بھے بنا ہوا تھا کہ لوگ دھرم کا غلط مطلب نہ نکالنے لگیں۔ ایسے سمویدنشیل دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک کٹھن ایوم اہم ذمہ داری تھی۔ ایک اور لوگوں کے ناستک ہونے کا خطرہ تھا، تو دوسری اور اسلامی سدھانتوں ایوم شکشاؤں کو پریورتن اور غلط مطلب نکالنے جیسے کام سے سرکشت رکھنا تھا۔ ان سمویدنشیل پرستھتیوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی شکشاؤں ایوم سدھانتوں کو پنرجیوت کرنے کا پیڑا اٹھایا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی 34 ورش کی امامت کے دوران ایشوری شکشاؤں کی پراپتی کی چاہت رکھنے والوں کے لیے پرتیکش روپ سے ایشوری پرتنیدھی دوارا انہیں پراپت کرنے کے لیے سورنم افسر موجود تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سارجنک روپ سے ایوم وشیش روپ سے بھی لوگوں کو وبھن وشیوں کا گیان دیا۔ آپ کے سارجنک کلاسوں میں شیعہ اور سنی دونوں ہی بھاگ لیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کے بیچ مانوی ایوم بھاوناتمک گہرے رشتوں کی بہت سفارش کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ भलाई करो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत एवं विनम्रता से पेश आओ।
जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत का काल आरंभ हुआ तो आपके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से तत्कालीन शासक ने आपके अनुयायियों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लोगों तक इस्लामी शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनाया। इसके माध्यम से वे लोगों से जुड़े रहते थे। अपनी किताब इरशाद में शेख मुफीद लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग आसपास और दूर दराज के इलाकों से आया करते थे। हर जगह उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। इमाम ने विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां अंजाम दी थी। हदीस के विशेषज्ञ विद्वानों ने हजरत से हदीस बयान करने वाले विद्वानों की संख्या लगभग 4000 बताई है।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने शिष्यों का बहुत सम्मान करते थे और उनका प्रोत्साहन किया करते थे। वे कभी कभी खुद भी उनसे मुलाकात के लिए जाते थे। एक दिन हजरत ने अपने एक शिष्य अबू हमजा से कहा, वास्तव में तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक अन्य शिष्य अकबा बिन खालिद का कहना है कि जब हम हजरत से मुलाकात के लिए जाते थे तो वे फरमाते थे कि स्वागत है उन लोगों का जो हमें अपना दोस्त मानते हैं, हम भी उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। ईश्वर लोक परलोक में तुम्हारे साथ रहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम समस्त लोगों को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे युवाओं को संबोधित करते हुए कहा करते थे कि मुझे तुम जवानों में से किसी को इन दो स्थितियों के अलावा देखना पसंद नहीं है, या वे विद्वान हों या फिर विद्यार्थी। इसी प्रकार आप फरमाते थे, ज्ञान प्राप्त करो और उसे दूरदर्शिता एवं सज्जनता से सजाओ, अपने शिष्यों के साथ विनम्र रहो और गुरुओं के सामने सभ्य बनो, कदापि विद्वानों के सामने स्वार्थी न बनो, इसलिए कि इससे तुम्हारी सच्चाई समाप्त हो जाती है।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने इन बहुमूल्य कथनों में ज्ञान प्राप्ति के सही उद्देश्य का उल्लेख किया है। आपने विद्यार्थियों से सिफारिश की है कि वे लोग उत्कृष्टता की प्राप्ति एवं लोगों की सेवा के उद्देश्य से ज्ञान प्राप्त करें। जो ज्ञान दिखावे और गर्व के लिए प्राप्त किया गया हो, उसका कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसका नुकसान ही होता है। इस प्रकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उचित अवसर का लाभ उठाते हुए और समाज की ज़रूरतों के मद्देनज़र अपने पिता इमाम मोहम्मद बाकर के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा शैक्षिक केंद्र स्थापित किया।
उनके इस केंद्र में हिशाम बिन हकम, मुफज्जल बिन अम्र और जाबिर बिन हय्यान जैसे बहुत से शिष्यों ने हिस्सा लिया। जाबिर बिन हय्यान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य थे जिन्होंने रसायन शास्त्र के विषय पर 500 बड़ी छोटी पुस्तकें एवं पुस्तिकाएं लिखी हैं। बाद में जाबिर बिन हय्यान रसायन शास्त्र के जनक के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। मध्ययुगीन काल में जाबिर बिन हय्यान की किताबों का विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुफज्जल भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक दक्ष शिष्य थे। उन्होंने तौहीदे मुफज्जल नामक किताब लिखी जिसे आज भी धार्मिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ाया जाता है।
केवल शिया मुसलमान ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शिष्य नहीं थे, बल्कि सुन्नी मुसलमानों ने भी इमाम के ज्ञान से काफ़ी लाभ उठाया। सुन्नियों के चार इमामों में से कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इमाम के शिष्य थे। उन इमामों में सबसे प्रमुख अबू हनीफा थे। ابو حنیفہ نے 2 تک امام جعفر صادق علیہ السلام سے گیان پراپت کیا تھا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے دھرم شاست کو لکھت روپ میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنے شش ودوانوں سہت گیان کا مولیوان بھنڈار اسلامی جگت کے لیے وراثت میں چھوڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پریاسوں سے نیتکتا، دھرم شاست، ترک شاست، قرآن کی ویاکھیا اور انی وشیوں میں کافی مہتوپورن گیان اسلامی جگت کو پراپت ہوئے۔ گیان پر آدھارت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مت کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ امام کے نیتتو میں شیعہ مت ایسا پہلا مت تھا جس کی دھارمک بنیادوں کا آدھار وچار اور بدھی پر آدھارت تھا۔ کسی بھی انی مت کی تلنا میں اس مت میں گیان اور بدھی کو ادھک مہتو پراپت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شکشاؤں کے کارن شیعہ مت کو جعفری مت کے نام سے جانا جاتا ہے۔
لوگوں میں جاگرتی لانے کے کارن امام جعفر صادق علیہ السلام بنی امیہ اور بنی عباس کی نظروں میں کھٹکا کرتے تھے۔ ان کے اتیاچاروں کے باوجود وبھن اوسروں پر امام نے ان شاسکوں کا ورودھ بھی کیا۔ دوتیا عباسی خلیفہ منصور 21 ورش تک امام جعفر صادق علیہ السلام کا سمکالین تھا۔ وہ امام کی گتیویدھیوں سے بہت چنتت رہتا تھا۔ وہ امام اور جنتا کے بیچ دوری اتپن کرنے کا پریاس کرتا رہتا تھا۔ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر بہت اتیاچار کیے۔
اپنے ہر پرکار کے اتیاچاروں کے باوجود وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے مارگ درشن کے دویپ کی روشنی کو سماپت نہیں کر پایا۔ انتتہ جب اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقابلہ کرنے میں خود کو اسہائے پایا تو ایک سازش کے تحت امام کو زہر دے دیا، جس کے پریرام سروپ وہ آج ہی کے دن شہید ہو گئے۔ آپ کو پوتر نگر مدینے کے جنت البقی نامک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔
دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے دکھد اوسر پر ہم اپنے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں ہاردک سمیتنا پرکٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انومتی چاہتے ہیں۔
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। दीदी मरियम और भैया रविश का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
और एक चीज़ और दीदी साथ में कहते चलें कि आज जो है वो हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख है, तो हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपकी सेवा में संवेदना व्यक्त करते हैं।
तो भैया, आज भी हम हमारे कार्यक्रम में कमेंट्स और पत्र ईमेल शामिल कर रहे हैं और कुछ श्रोताओं के विचार भी शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ईमेल है जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे का। लिखते हैं कि मैं प्रतिदिन रेडियो तेहरान हिंदी सेवा के कार्यक्रम सुनता हूँ। आपके सब कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे दिनांक 22 अप्रैल दिन शुक्रवार का कार्यक्रम पत्र संसार बेहद पसंद आया। कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्र के उत्तर सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं नियमित रूप से आपके वेबसाइट पर जाकर विभिन्न लेखों को पढ़ता हूं और समाचार भी देखता हूं। शुक्रिया
दुर्गेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप निरंतर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं। और सबसे विशेष बात यह है दीदी कि ये हमारे सभी कार्यक्रमों को बहुत ही ध्यानपूर्वक वो सुनते हैं और उसके ऊपर अपनी राय भी देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत यानी हमारा जो हौसला बढ़ाती है ये चीज़ें और हमको इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि हम आप तक सही खबरों को और सही चीज़ों को पहुँचाएँ।
जी, उरुज मेहदी انہوں نے کہاں سہل نہیں لکھا ہے لیکن لکھتے ہیں کہ شیعہ سمودائے نے ماہ رمضان کے الوداع جمعے کو قدس دیوس کی شکل میں منایا. یہ ہمیں بہت دیر سے ملا ہے, یہ بھی بتا دوں آپ کو بھیا. نوریہ سرا میں نماز کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اور اس پر اسرائیل کا 1948 سے ناجائز قبضہ ہے, آزادی کے لیے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی اس میں کی گئی. ایران کے دھرم گرو امام خمینی صاحب نے 1979 کو قدس دیوس مانے جانے کا اعلان ماہ رمضان کے الوداع جمعے کے لیے کیا تھا. تب سے لے کر آج تک الوداع جمعے کو قدس دیوس منایا جا رہا ہے. نوریہ سرائے میں بعد نماز کے مولانا میثم عباس, ڈاکٹر عابد حیدری, مولانا مظہر پیکر سنبھالی اور سبھی نمازیوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی اور مسجد اقصی سے ناجائز قبضہ ہٹانے کی دعا کی.
اے عروج مہندی صاحب, ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیول شیعہ سمودائے جو ہے
جی
وہ انتراشٹریہ قدس دیوس جو ہے وہ نہیں بناتا, بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے انتراشٹریہ قدس دیوس کو مناتے ہیں. اور یہ وشیش نہیں ہے کسی ایک سمودائے کا, بلکہ یہ قدس دیوس جو ہے وہ ایکتا کا بھی پرتیک ہے, جہاں ہم اپنے یعنی فلسطینی راج کے پرتی اپنی ایک جٹتا اپنا سمنوے ان کو دکھاتے ہیں, اسی طرح یہ ایک جٹتا بھی ہے تمام مسلمانوں کے درمیان, تمام مسلمانوں کے بیچ. تو اس چیز کو آپ الگ کر دیئے کہ یہ قدس دیوس جو ہے وہ کیول شیعہ سمودائے مناتا ہے, بلکہ امام خمینی کی کال پر, ان کے آدیش پر پوری دنیا کے مسلمان اس دن, بلکہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر دن جو ہے وہ فلسطینیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, بیت المقدس کے بارے میں, مسجد الاقصی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس دن کو وشیش کیا ہے تاکہ ہم جو ہے کم از کم ایک دن ایسا ہو کہ اس کو بھولے نہیں. جی دوستوں, ابھی جیسا کہ آپ ہمارے پریے شروتاؤں کے ای میل کے بارے میں سن رہے تھے, انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری باتیں, ہماری چیزوں کے بارے میں, ہمارے کاریکرموں کے بارے میں بتایا ہے, اور ہم آشا کرتے ہیں جو بھی ہمارا اس وقت کاریکرم سن رہا ہے آپ بھی جلدی سے اپنا موبائل پہ سن رہے ہیں, ریڈیو پہ سن رہے ہیں, جہاں بھی سن رہے ہیں جلدی سے اپنا موبائل اٹھائیں, اپنا کمپیوٹر اٹھائیں نہیں بلکہ کمپیوٹر پہ کلک کریں اور ہمارے کاریکرموں کے بارے میں اپنی رائے کو ہم تک پہنچائیں. تو آپ چلتے ہیں دیدی کے پاس اور دیکھتے ہیں دیدی کے پٹارے میں آج کیا ہے. ان کے جو سنسکرتک جو پروگرام ہوتا ہے, دیدی کا جو کاریکرم ہوتا ہے, اس میں اکثر دیدی یا کھانے کی چیز لاتی ہیں یا گھمانے کی چیز لاتی ہیں. ویسے دیدی پیٹ تو آج جو ہے بھرا ہوا ہے, تو آج گھمائی دیجیے آپ.
جی, قشم ہرمز جلڈمبرو میں ایک سندر ایرانی دویپ ہے جو فارس کی کھاڑی کو عمان ساگر سے الگ کرتا ہے. ڈولفن کے آکار کا یہ فارس کی کھاڑی کا سب سے بڑا اور دنیا میں اپنی طرح کا سب سے بڑا دویپ ہے. یونیسکو کی وشو دھروہر استھل اور جیو پارک کے روپ میں پرسدھ قشم بہت سارے آکرشنوں کا کیندر ہے جو کسی بھی پریٹک کو پربھاوت کرتا ہے, جس میں سکھد سمردھ تٹ, پراکرتک استھل, ونیہ جیو, گفائیں, گھاٹیاں اور ادبھت جنگلوں سے گھرے ہوئے نیلے پانی کے جھیل بھی شامل ہیں. پراکرتک سندرتا کے علاوہ ایران کا دوسرا سب سے بڑا فری ٹریڈ زون کھیتر ہے یہ. قشم کئی پراکرتک, ایتہاسک, دھارمک اور ویاپارک آکرشنوں کو سمیٹے ہوئے ہے. یہ کئی گاؤں کی میزبانی کرتا ہے جو اپنی سنسکرتی, ویش بھوشا تتھا پرکرتی میں ادویتیہ ہے.
بالکل صحیح بات کہا ہے دیدی اور شروتاؤں, سچ یہ ہے کہ دیدی جو قشم کے بارے میں بتا رہی, اسی طرح ایران میں ایک دیوپ ہے کیش.
جی.
تو ایران میں جو جگہ ہے, استھان ہے خاص وشیش کر جو گھومنے پھرنے کی اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے, اب یہ چھوٹا تو نہیں کہا جائے گا.
جی.
بلکہ اس پورے کھیتر میں سب سے بڑا دویپ ہے. تو
جی.
اس طرح کے جو دویپ ہیں وہاں پر کافی سندرتا ہے, یعنی سندر سندر چیزیں ہیں, پہاڑ آپ دیکھیں گے, پھول کے الگ الگ جو ہیں وہاں پر باغ ہیں, اس کے علاوہ گفائیں جیسے آپ نے بتایا. یہ ایسے استھان ہیں جہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے گھومنے کے لیے, اور ان تمام جگہوں پر
ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے. یہاں
ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے, یہاں کے موسم بھی بہت سہانا رہتا ہے. اور سب سے وشیش چیز جو مجھے پسند ہے ان استھانوں کی وہ یہ ہے دیدی کہ آپ اکثر آپ دیکھیں دنیا میں جائیں, جو بیچ ہیں, سمندری بیچ ہیں, وہ بہت زیادہ प्रदूषित हो चुके हैं, लेकिन इन स्थानों पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ के पानी, जैसा भी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, नीला पानी है
जी।
तो यहाँ पर नीला पानी होने के, पानी आमतौर से नीला ही होता है, लेकिन वो गंदगी की वजह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है। जो घूमने आने वाले लोग होंगे और आएंगे, उनको यहाँ पर काफी मजा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए, अब दीदी ने हम लोग को घुमा दिया है, कृष्ण की सैर करा दी है, तो अब चलते हैं कि दीदी के पास कमेंट्स में किस क्या क्या है और किसके किसके कमेंट्स हमारे लिए हैं।
जी, ईरान ने परमाणु समझौते के बारे में अपने पत्ते खोल दिए, इस पर मोहम्मद लिखते हैं, आईएईए के प्रमुख के साथ मजबूती से खड़े हों और बिना किसी हिचकिचाहट के सही बात कहें। ये युग सत्यता का युग है और असत्य और धोखे का युग चला गया है। चिंता के बिना कहो और ठीक वही करो जो तुम कहना और करना चाहते हो। फ्री मेसन राक्षसों को अपने काम और निर्णयों में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें।
बिल्कुल सही बात कही है मोहम्मद जी आपने, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मोहम्मद जी के, अगर किसी भी देश पर जितना ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, पूरी दुनिया में किसी भी देश पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है, और अत्यधिक दबाव की नीति भी जो है वो अमेरिका द्वारा जारी है, उसके बावजूद ईरान सच के रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। अगर यही कंडीशन किसी और देश की होती, इस वक्त वो सरेंडर कर चुका होता इन ताकतों के आगे, लेकिन ईरान ने अपने आप को मजबूती से बनाए रखा, आज भी अपनी बातों पे खड़ा है, और सिर्फ इसलिए खड़ा रह पा रहा है कि वो सच के रास्ते पर चल रहा है। तो ये जो सच्चाई का रास्ता है, इसमें कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन कहते हैं कि सत्य जो है वो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। देर में आपको उसका नतीजा मिलेगा, लेकिन जो है वो नतीजा ज़रूर मिलेगा, और जब नतीजा मिलेगा तो उसका जो सुख होता है वो झूठ के रास्ते से और छल और कपट के रास्ते से ज़्यादा अच्छा नतीजा होता है।
फिलिस्तीनियों की अरब देशों से उम्मीद खत्म हो गई, प्रतिरोध ने लेबनान को स्वतंत्र कराया, सैयद हसन नसरुल्ला। इस पर अली लिखते हैं, अधिकांश अरब देश भ्रष्ट यूएस के कठपुतलियों द्वारा शासित है, उनके लोग बदले में जो चाहते हैं उसके विपरीत ये करते हैं। यूएस में अरबों के लिए बिलियंस डॉलर्स मुफ्त में चेंज करके देते हैं, यदि उन अरब देशों में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता होती तो उनके पास कुछ भी नहीं होता।
बिल्कुल सही बात कही है, और आज अरब देश जो है वो धीमे धीमे जो अवैध ज़ायोनी शासन है उसके शरण में चले जा रहे हैं, वो भी उनका जो आका है इन अरब देशों का वो अमरीका, उसके वजह से। बहरहाल ये हुकूमतें जो है वहाँ की जो जनता है वो आज भी उनके दिल जो है वो बैतुल मुकद्दस मस्जिदुल अक्सा के लिए धड़कते हैं, फिलिस्तीन की जनता के लिए धड़कते हैं, लेकिन जो वहाँ के शासक हैं इन देशों के, उनके दिल ही नहीं है, उनके दिल जो है वो बिल्कुल
पत्थर
के हो चुके हैं, और उनके दिल में दर्द जो है वो सिर्फ अपने लिए है, अपने पैसे, अपने ऐशो आराम के लिए है, इसलिए वो मुसलमानों और मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुकद्दस के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। वो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में अपने आप को अपनी गद्दी पे बनाए रखना चाहते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मेन कारण यही है, जनता कहीं की भी हो, जनता जो है भोली भाली होती है और उसके ऊपर प्रेशर होता है, अगर कोई आदमी बाहर निकलता है तो 10 तरह के उसके ऊपर केस ला दिए जाते हैं, हर तरह के अत्याचार किए जाते हैं। बहरहाल फिलिस्तीन हमारा है, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है और उस पर अधिकार बना रहेगा, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम अपनी आंखों से देखेंगे कि वहां तमाम दुनिया के मुसलमान एक साथ मिलकर नमाज पढ़ रहे होंगे। तो दीदी, हमें लगता है कि हमारे पास अब समय कम है, लेकिन जल्दी से चलते हैं किसी एक श्रोता के विचार, जिसका भी आप नाम बताइए, चलके उसका सुनते हैं।
जी, बिहार से ये हमारे अच्छे श्रोता हैं मुकुंद कुमार, और ये अभी भी विद्यार्थी हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं इनके विचार सुनते हैं।
मेरा नाम मुकुंद कुमार है, मैं ग्राम पिपराही जिला शिवहर बिहार का रहने वाला हूँ।
मैं के स्टूडेंट हूँ और इस वर्ष दसवें वर्ग में मैं गया हूँ और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और विज्ञान के क्षेत्र में मुझे बहुत रुचि है और मैं एक क्लब से भी जुड़ा हूँ
जी।
वो विज्ञान का क्लब है और विज्ञान में मैं आगे ये करना चाहता हूँ और रेडियो तेहरान को भी मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है सभी प्रोग्राम और उद्घोषक और उद्घोषिकाएं की आवाज भी हमें बहुत अच्छी लगती है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छे लगते हैं और एक ये क्लब भी श्रोता क्लब भी बनाया है। मेरे क्लब का नाम है पूज्य महात्मा गांधी रेडियो लिसनर्स क्लब, अध्यक्ष हूँ। अभी तो 20 सदस्य हैं। सुन रहे एक्चुअली अभी तो मैं नया श्रोता हूँ इसलिए उतने बारे में तो जानकारी भी नहीं है, लेकिन 20 हम लोग 20 बिल्कुल यंग लोग हैं और सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी और मैं पत्र में लिखूंगा, उनको भी बताऊंगा कि आप भी लिखिए लेटर। ये डॉक्टर हेमंत साहब भागलपुर बिहार के भागलपुर जिले के गोराटी ग्राम के हैं, निवासी हैं। तो उन्होंने मतलब वो हमारे विज्ञान के बारे में, विज्ञान में जैसा कि मैंने आपको बताया है विज्ञान क्लब से भी मैंने जुड़ा है, तो उसी के अनुसार हमें उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने ही बताया कि वो रेडियो के बहुत दिग्गज आदमी है, वो विश्व स्तर के जितने भी रेडियो है सभी को सुनते हैं, सभी के प्रोग्राम पर टिप्पणी करते हैं और उन्होंने क्लब भी बनाया है। तो उनका नाम है डॉक्टर हेमंत, तो उन्होंने हमको आपके प्रोग्राम के बारे में बताया, रेडियो के बारे में बताया, तब से हम रेडियो तेहरान को सुन रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद कुमार जी, आपने अपनी इस छोटी सी उम्र में बहुत ही उच्च स्तर के जो है विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके अच्छे भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अपने भैया रविश और दीदी मरियम को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। आज पूरी दुनिया में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का शोक मनाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि IRGC आतंकवादी गुटों के लिए एक डरावना सपना है। ईरान और भारत ने संबंधों में विस्तार पर बल दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 36,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमारा यह प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@aarib.ir। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
Thank you.